मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 14 मार्च 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं विपिन पटेल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, प्रवीण कुमार शाह पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, वेद प्रकाश शाह आप भी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से ही हैं, सलोनी सोलंकी धार मध्य प्रदेश से, मिथुन भगत न्यू दिल्ली से, दिलीप कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और आशुतोष कुमार आहिरे बिलासपुर से। तो विपिन, प्रवीण, वेद प्रकाश, सलोनी, मिथुन, दिलीप और आशुतोष, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के इस क्रम के बाद अब मैं बधाई देना चाहूंगा रामेश्वर प्रताप सिंह पटेल को, जो हमारे 6th बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं और इन्होंने भी ईमेल के जरिए सूचित किया है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस के अभी रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले आए हैं, उसमें इनको सफलता प्राप्त हुई है। तो रामेश्वर, आपको मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और अभी साक्षात्कार में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छे अंक हासिल करें, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं न्यूज एनालिसिस पर। और हमारे न्यूज एनालिसिस का जो आधार है वो है कल के आकाशवाणी की न्यूज और फिर अखबार। तो आप जानते हैं कि कल चूंकि होली का दिन था तो आज अखबार नहीं आए हैं, इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो AIR न्यूज पर ही आधारित होगा। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में आपने देखा, इस बीच में काफी जबरदस्त घटनाएं हुई हैं। 5 राज्यों में जो मतदान हुए थे उनके चुनाव परिणाम आए और चुनाव परिणाम आपको बहुत अब अच्छे तरीके से मालूम है, उनकी चर्चा पर हम लोग नहीं जाएंगे। मैं थोड़ी सी इसी बात को आधार बना करके कुछ पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, मैं कई बार आप लोगों को याद दिला चुका हूं और आगे भी याद दिलाता रहूंगा, इसके लिए आप लोग माफ कीजिएगा, क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स लगातार इस डेली ऑडियो से जुड़ते रहते हैं कि आपका जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है, यानी कि मेन्स की बात मैं कर रहा हूं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर नहीं है। उसका जो आप टाइटल देखेंगे पेपर का, जो नाम है उसमें 5 शब्द दिए हुए हैं, शब्द ज्यादा हैं लेकिन उसमें 5 पॉइंट हैं, जिसमें पॉलिटी भी है, गवर्नेंस भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये 3 हैं, 2 और हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपका ये होमवर्क है। 2 और कौन से हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो बेहतर होगा कि आप सिलेबस में देख उठाएं और देखें कि ये 2 नाम और कौन से हैं। फ्रेंड्स, यहां 2 शब्द पर मैं जाना चाहूंगा, वो है एक पॉलिटी और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं उसका संबंध पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, नो डाउट कि गवर्नेंस से उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने इन तीनों का नाम एक साथ लिया। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि इन चुनावों ने कह लीजिए, 5 राज्यों के चुनाव ने भारतीय राजनीति में जो एक जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है या आ चुका है या कह लीजिए कि आगे और तेजी से आएगा, उसके बहुत से प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। अब आप देखें कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम पॉलिटी में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 भाग हैं अभी इन बीच के 3 दिनों की जितनी भी घटनाएं हैं, और ये सब की सब घटनाएं संबंधित है केवल इन 5 राज्यों के चुनाव से। तो आइए सबसे पहले मैं आता हूं कॉन्स्टिट्यूशन पर, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लूं, इसके बाद फिर मैं पॉलिटी पर आऊंगा क्योंकि बड़ा हिस्सा पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अब यह है कि चुनाव हो गए, ठीक है, चुनाव होने के बाद अब सरकार बननी है, राइट। तो सरकार बनने में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, वहां अब मुख्यमंत्री का फैसला होगा। उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं है, वहां सरकार, वहां बहुमत से एक पार्टी सत्ता में आ गई है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी आई है, वहां बड़े आराम से सरकार बन जाएगी। पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ आई है, वहां भी सरकार बन जाएगी। अब हमारे पास जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो दो है, वो है गोवा और दूसरे हैं मणिपुर, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लें क्योंकि कहीं जब तक ऐसे मामलों में कह लीजिए कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की जरूरत है या इस तरह के विवाद की स्थिति आ जाती है वहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो बेहतर है कि हम अगर अनुच्छेद को भी कोट कर सकें तो। अब आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, राइट। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि गोवा में जो हमारे रक्षा मंत्री पर्रिकर जी थे उन्होंने त्यागपत्र दिया है और उनको गोवा भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में। वो राज्यपाल से मिले, राज्यपाल से उन्होंने क्लेम किया कि मैं सरकार बना सकता हूं, सरकार, राज्यपाल ने उनके उसको स्वीकार किया, उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। अब वो शपथ लेंगे। अब यहां जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम है आप देखिए कि वो ये है कि सामान्य तौर पर सबसे बड़े दल को राज्यपाल या राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, राइट। वहां कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, मतलब 40 में 21 चाहिए तो इतने कांग्रेस के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी इतने नहीं है, वो सेकेंड लार्जेस्ट है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनका सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा होगा तो उन्होंने गवर्नर साहब को जो भी कन्विंस किया हो कि इनका सपोर्ट मेरे पास है, भले वो लिखित में किया हो, और उससे जो गवर्नर हैं वो कन्विंस हुए होंगे और उन्होंने उनको कह दिया कि ठीक है आप आइए और सरकार बनाइए, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना ही चाहिए और मैं बहुत इत्मीनान के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि यह बात बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब देखिए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर हम पॉलिटी पर आएंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यह है, चलिए मैं राष्ट्रपति के रूप में बात करता हूं, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो अनुच्छेद 74 है, ये अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, 74 और 75। अनुच्छेद 74 में केवल ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान यानी कि प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, राइट। इसमें 74 में कुछ नहीं, सीधे यह दिया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने उसके कंटिन्यूएशन में दिखाने के लिए उसको आपको बताया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए वो है 75, अनुच्छेद 75, याद रखना बहुत आसान है 75। उसमें लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, राइट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग सामान्यतया बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि अखबारों में भी आर्टिकल में आपको इस तरह के वाक्य पढ़ने को मिल जाएंगे कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ये टर्मिनोलॉजी बहुत हम लोग यूज करते हैं, हमारे संविधान के शब्द ये नहीं है। हमारे संविधान में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सीधे लिखा हुआ है। और मित्रों बिल्कुल इसी की तर्ज पर, क्योंकि अभी तो हम बात गोवा स्टेट की कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पैर, वो कह लीजिए कि वहां जो प्रथम नागरिक की भूमिका में राज्य में है तो वो हमारे राज्यपाल है। राज्यपाल के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी आपको अनुच्छेद सहित याद होने चाहिए, 163, बिल्कुल जो बात राष्ट्रपति के संदर्भ में कही गई है वही बात यहां राज्यपाल के संदर्भ में कही गई है। वहां अनुच्छेद 74 है, यहां अनुच्छेद 163 है, और इसमें दिया गया, लिखा गया 163 में कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राइट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने समानांतर दिखाने के लिए, उसके समानांतरता को शो करने के लिए आपको यहां पढ़ करके सुनाया है। अब देखिए 164 में क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 164 में लिखा हुआ है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यहां भी जो शब्द यूज किया गया है, जो वर्डिंग्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वह है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यानी कि यहां भी कहीं भी नहीं लिखा गया है कि राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा या उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन क्या वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, है ना? देखिए एक्सप्लेन जब आप करते हैं तब इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन की पावर आती है, क्षमता आती है। दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में ही जो 75 अनुच्छेद 75 है उसके नंबर 3 पर यह मेंशन किया हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आ गया बहुमत, आ गया यहां सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी का मतलब है कि अगर वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। साफ है कि अब राष्ट्रपति ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसका बहुमत हो, भले ही वो वहां मेंशन नहीं किया गया है। ठीक यही बात एग्जैक्ट राज्यपाल के बारे में भी कही गई है। राज्यपाल के बारे में भी वो यही बात कहते हैं सीधे सीधे कि वह जो है उसका भी जो 164 मैंने जो अनुच्छेद बताया है उसका सेकेंड पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बहुत क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि तभी यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी के सिद्धांत का पालन किया जा सकेगा जबकि उसके पास बहुमत हो। राइट, अब आप देखें कि ये राज्यपाल नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये सीधे सीधे शब्दों में दिया हुआ है। अब राज्यपाल क्या करें, कैसे नियुक्त करें? देखिए जहां बहुमत दल किसी भी पार्टी को बहुमत मिल गया है वहां तो कोई संकट नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि आपके उत्तर प्रदेश में कोई संकट नहीं है, पंजाब में कोई संकट नहीं है, उत्तराखंड में कोई संकट नहीं है, संकट मणिपुर में भी आ रहा है और संकट गोवा में भी आ रहा है। तो गोवा में जब राज्यपाल ने पर्रिकर जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, तो कांग्रेस उच्चतम न्यायालय गई और उसने सीधे सीधे कहा कि जो हम सबसे बड़ी पार्टी हैं तो हमें सरकार बनाने के लिए पहले आमंत्रित किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर जो भी स्टैंड लेना होगा वो लेगी, लेकिन फिलहाल ये कह दिया है जो अभी लेटेस्ट खबर है उसके हिसाब से कि वो 16 तारीख को फ्लोर पर, हालांकि गवर्नर ने 15 दिन का समय दिया हुआ था, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि फ्लोर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी विधानसभा के अंदर वो अपना बहुमत सिद्ध करे। राइट, मणिपुर में भी लगभग इसी तरह का संकट पैदा होने जा रहा है क्योंकि मणिपुर में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, बीजेपी सेकेंड नंबर पर है, लेकिन सरकार बनाने का दावा बीजेपी ने भी पेश किया है और कांग्रेस पार्टी ने भी पेश किया है। अब देखें कि कौन सच में अपना बहुमत सिद्ध कर पाता है। तो दोस्तों अब यहां पर एक चीज जो उभर कर आती है वो ये है कि जो गवर्नर है वो कैसे इस बात के प्रति इंश्योर हो कि सरकार जो बनेगी वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर देगी। ये शुरू से ही बहुत ही एक विवादास्पद बिंदु रहा है। ऐसी स्थिति में अब गवर्नर्स क्या कहते करते हैं कि वो एक लिखित मांगते हैं कि भाई कौन कौन आपके सपोर्ट में है, और बाकायदे वो हस्ताक्षरित प्रति मांगने लगे ताकि वो इंश्योर हो जाए कि हाँ इनको इन इनका बहुमत मतलब समर्थन प्राप्त है। और देखिए राज्यपाल को अगर हम ये कह देते कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित करे तो यहां एक व्यावहारिक परेशानी खड़ी होगी। व्यावहारिक परेशानी यह है कि हो सकता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को दूसरों का समर्थन प्राप्त न हो सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट को समर्थन प्राप्त हो। इस तरह की स्थिति केंद्र में आ चुकी है, केंद्र में आ चुकी है। और उस आप दूसरी तरफ देखेंगे दूसरी पार्टीज के साथ भी ऐसा हुआ है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर आप दिल्ली को ही ले तो वहां भी सरकार बनाने में इस तरह का संकट आया था। दूसरे कई राज्यों में भी संकट आए हैं और केंद्र में भी आ चुका है। पिछले दशक में मतलब ये जो आपके सन 1990 से 2000 के बीच में आप देखेंगे कि काफी सरकारों में केंद्र स्तर पर परिवर्तन आया। और उसमें ऐसी स्थिति में अब एक जो आदर्शवादी स्थिति बनती है वो ये है कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करें, और यदि सबसे बड़ी पार्टी अपनी असमर्थता व्यक्त करती है तो सेकेंड लार्जेस्ट को करें। यह एक आदर्शवादी स्थिति हो सकती है। दूसरी आदर्शवादी स्थिति हो सकती है कि जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति हैं केंद्र के लिए आप कह लीजिए, वो अपने विवेक का प्रयोग करें और उसमें देखें कि सच में कौन सरकार बनाने की स्थिति में है। अब यहां मैं एक दूसरी पॉलिटी की बात बताता हूं मित्रों। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, मैंने थोड़ी सी व्याख्या कर दी आपके सामने। जो पॉलिटी है वो क्या है कि जो गवर्नर है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यपाल मूलतः केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें यह है कि गवर्नर का टर्म फिक्स नहीं, उस तरह से तो 5 साल के लिए है लेकिन वो सही मायने में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। मतलब वो जरूरी नहीं कि वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करे ही। तो ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है कि जो राज्यपाल है वो पूरी तरह से राज्यपाल पर पूरी तरह से राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है, यानी कि प्रधानमंत्री और जो उनकी कैबिनेट है, जो मंत्रिपरिषद है उसका नियंत्रण होता है। और जो गवर्नर की नियुक्ति भी होती है उसके लिए नाम भी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा ही सुझाया जाता है। इसीलिए इनडायरेक्ट में आप कह सकते हैं, जो कहा भी जाता है, कि जो राज्यपाल है वह केंद्र का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि शब्द तो बहुत अच्छा है, चलिए वो चलता रहे, लेकिन ये कहा जाता है कि वह केंद्र के हितों की रक्षा करता है, प्रधानमंत्री के हितों की रक्षा करता है, मंत्रिपरिषद के हितों की रक्षा करता है। तो राज्यपाल प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के की जो इच्छा है उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। और यदि उसने ऐसा कदम उठाया तो फिर वो कुछ ही दिनों का मेहमान होगा, कुछ भी उसके साथ हो सकता है, क्योंकि उसका जो टेन्योर है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। जैसे कि सीएजी और इलेक्शन कमिश्नर, उनको जो जितनी ज्यादा संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है वो हमारे राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। और सच पूछे तो ये इतना इम्पॉर्टेंट इश्यू है फ्रेंड्स कि जिसको लेकर लगातार भारत में जो संघवाद की जो प्रणाली है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि संघवाद पर जो सबसे ज्यादा जो चोट करने वाला जो संस्थान है वो राज्यपाल का संस्थान है, कि राज्यपाल एक तरीके से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करके हमेशा राज्यों को, अगर वहां दूसरी पार्टी की सरकार है तो उनको अस्त व्यस्त अस्थिर करने के काम में लगे रहते हैं। इससे पहले भी आपने उत्तराखंड के मामले में कुछ इसी तरह की स्थिति देखी थी, जो फिर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर हाउस ऑफ द फ्लोर में फैसला हुआ और उसमें फिर हरीश रावत जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनको फिर से, जिनको हटा दिया गया था, फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों ये पॉलिटी की बात है, जो मैंने सेकेंड पार्ट जो किया वो पॉलिटी की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, उसकी भावनाओं का किस तरीके से हम सम्मान कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को किस तरीके से हम लागू कर रहे हैं, वो होता है पॉलिटी। और आपके सेकेंड पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं। बेस कॉन्स्टिट्यूशन का होता है लेकिन उसके ऊपर का जो पूरा ढांचा होता है वो पॉलिटी का होता है। इसलिए यदि दोनों पर हमारी पकड़ अच्छी नहीं होगी तो हम सेकेंड पेपर में के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अच्छा आंसर नहीं लिख सकेंगे। तो दोस्तों न्यूज एनालिसिस के बारे में इतना ही। न्यूज में और पब्लिक स्पीक का जो सब्जेक्ट दिया गया है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग समय निकाल सके तो उसे सुने। जो मातृ शिशु मृत्यु दर पर जो दिया हुआ है टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आपको जानना चाहिए। सिविल सर्विस के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों अखबारों से कुछ विशेष नहीं है, मैंने कुछ क्लिपिंग्स डाली हैं जो कल के अखबारों की क्लिपिंग्स हैं वो आप लोग देख लेंगे। उसमें एक जो इसराइल को लेकर के जो क्लिपिंग है, हालांकि बहुत ही सामान्य स्तर का वो की टिप्पणी है, फिर भी चूंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी इसराइल जाने वाले हैं और भारत और इसराइल के संबंध काफी बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे, एक अलग तरह की बात चल रही है, तो अच्छा होगा कि उसकी पृष्ठभूमि को आप जान लें। तो दोस्तों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। मित्रों सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रजत कुमार जो बोलपुर से हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को याद रखा कि 11 मार्च को इस ऑडियो गाइडेंस के 3 साल पूरे हो गए हैं और उस अवसर पर उन्होंने ऑडियो गाइडेंस को अपनी बधाई भेजी है। तो रजत आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने याद रखा और आपकी शुभकामनाएं हम लोगों को मिली और निश्चित रूप से हमारे जो प्रिय श्रोता हैं उनकी शुभकामनाएं, उनका सहयोग ही हमारी वो सबसे बड़ी ताकत है कि हम 3 साल का ये सफर पूरा कर सके हैं। और अगर आप लोगों का इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो आगे भी यह सफर लंबे वक्त तक जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अंकित सिंह, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, सौरभ श्रीवास्तव, गोपाल रावत, माधव सिंह, विशाल जमशेदपुर से, सोहन कुमार, कुंदन निराला खगड़िया बिहार से, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद से, शिव चौहान लखनऊ से, नितिन लोवंशी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, इमरान हुसैन मोतिहारी बिहार से, योगेश कुमार साहू कोरबा छत्तीसगढ़ से और मनवीर सिंह, आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।